पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय श्रीकृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने भगवद्भक्तिभ्यो हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते प्रणमामि हरि महादेवी काकु हरगद गदयात्रवाच जाचे निपत्तभूरि दण्डवतो दुःखकरति अस्य प्रसादो गुणस्य गुणस्य गन्धर्विते अङ्गश्यामलिच्छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं यद्वञ्जागुरोषि संविदधतं तट्टङ्गरस्य रक्षिवासं हृदिगसद्दामाभिरामोदरं राधासन्निवेशितोऽपराधलक्ष्मी गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय सुरस्वताय तद्भक्ताय वैराग्यभक्तिरसंप्रियतु अपारमानमुदेक्षुमन्दन सनातन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले गोपाजिनोदिरमकातलयाजुगाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो नजिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे गर्मी के वजह से कोई घर से निकल नहीं बहुत देरी हो
जाती है। एसी
लगा रास्ते में लग जाता
है
गर्मी के वजह से नहीं आई ना गर्मी की वजह से रास्ते में हम लोग कूलर लगा रहे हैं उसको एसी से कहो
नहीं एसी तो है ही है कारण तो एसी कारण है
देखो
यार
अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे ये गर्मी लाने से ना ये पंखा नहीं आने से पंखा से थोड़ा सा चला लेंगे ना तो गर्मी पक जाएगी पसीना थोड़ा सा आ जाएगा और थोड़ा सा पंखा चला लेंगे हम सुफल पा मन की गर्मी किसी तरह से जदी हो तो हटेगी कूलर लगाओ जो कुछ भी लगाओ हमारे ऋषियों ने इस गर्मी को दूर करने के लिए अधिक चिंता नहीं की उन लोगों ने ये मन की गर्मी विषयों की गर्मी और विषय अभिमान से उत्पन्न हुआ ये गर्मी ये सब गर्मी को निकालने की चेष्टा ये गर्मी हम लोगों का कुछ भी अधिक नहीं कर सकती वो गर्मी है तो हमें जन्म मरण के चक्कर में लगा करके तिताप से कब्जा करते हैं तो पंखा टंका कुछ भी नहीं इसीलिए जीव गोस्वामी ने प्रति संदर्भ में बतलाया है एक श्लोक इस श्लोक को सभी लोग याद कर लो याद याद प्रति विवेक अविवेकी विशेष अंग पाए
सामे
पाम अनुसरत सामे हृदय जातिर अविवेकानां विश्वेश्वनुपायिनी त्वाम् अनुसरतः सामे त्वाम् अनुसरतः सामे हृदयं नाम यह है विष्णु पुराण का श्लोक। प्रहलाद महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, स्तुति के लिए ये मरजी गोस्वामी जी उसका उदाहरण दे करके बतला रहे हैं। जात पितिर अभिवेकिनी, संसार में अविवेकी लोग जिनको आत्म अनात्म का ज्ञान नहीं है, आत्म अनात्म का कोई ज्ञान नहीं, लोक परलोक का कोई ज्ञान नहीं, भगवत भक्ति का उनको कोई ज्ञान नहीं, देह देही का भी कोई ज्ञान नहीं, चिन्मय और जड़ का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे अविवेकी लोग जिस प्रकार से उन लोगों की विषय भोग में अविचलित प्रीति रहती है, या प्रति अविवेकी नाम विषयेषु अनपायिन, अनपायिनी नाम अविचलित
निरवच्छिन्न
नैरन्तर्यमयी विघ्न बाधा रहित नैरन्तर्यमयी स्थिर प्रीति रहती है विषय विषय लोगों में, विषयों में, विषय माने घर और घर के रहने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, पुत्र परिवार धन संपत्ति बाग बगीचा पशु इत्यादि जितनी भी ये चीज़ हैं विषय, इन लोगों में स्वभावतः उन लोगों की फूर्ति होती है। अभी चलिए, हे प्रभो ऐसे ही प्रीति त्वाम अनुस्मरत में, त्वाम अनुस्मरत आपके स्मरण में ही हमारी वैसी ही प्रीति हो जाए जैसे वो अपने विषयों का स्मरण करते हैं। विषय लोग हजार माइल दूर हैं तभी उन्हीं का स्मरण होता रहता है, लाख माइल दूर जाए उसके लिए दूरी का कोई प्रश्न नहीं, सुख में अपने दुख में रहें, अपने बुखार से भोग रहे हैं, अजी मेरी पत्नी कैसी है न जाने घर में, हमारा लड़का कैसा है, इस प्रकार से जैसे हम स्मरण करते हैं, हे प्रभु आपके स्मरण आपका जो स्मरण है सा में हृदया न अपसर, ऐसे ही आपका स्मरण है हमारे हृदय से कभी न उड़ जाए, सब समय में भी आपके चरण कमलों का सब समय स्मरण करता है। यहाँ पर एक चीज समझ लें, सुख और प्रीति एक नहीं है, सुख और प्रीति एक नहीं है, अपने लिए उल्लासात्मक जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं सुख, अपना खूब अच्छा लगता है उल्लास होता है उसको कहते हैं सुख, और जब भगवान के लिए भगवान की सेवा के लिए जब चित्त में उल्लास होता है तो उसका नाम है प्रियता, दोनों में
सुख और प्रियता, सुख अपना, सुख अपना
सुख अपना है, सुख का उल्टा अर्थ उल्टा है दुख, और प्रियता का क्या है उल्टा द्वेष, उसका उल्टा है एक प्रीति है और उसका ठीक उल्टा है द्वेष। प्रीति दूसरे में होती है और द्वेष भी किस में होता है, दूसरों में होता है, इसलिए ठीक विपरीत चीज। यहाँ पर प्रीति के लिए कारण विषयों में जैसी प्रीति है, विषय ते प्रीति अभे अच्छे जे हमार सही मतो प्रीति हो चल, वैसे ही प्रीति हमारे जैसे विषयों में लगी हुई है ऐसी ही प्रीति हमारी आपके चरण कमल में। तो यहाँ पर कह रहे हैं यद्यपि विषयों के प्रति जो कही गई और भगवान के स्मरण में जो प्रति कही गई दोनों को एक समता दी गई, एक ही समान। विषयों में जैसे हमारी प्रति है विषयी लोगों की, ऐसे ही आपके स्मरण में हमारी प्रति हो, हृदय से कभी वो हट न जाए। किंतु दोनों एक चीज नहीं है। विषयों की जो प्रीति है ममता है ये माया का गुण है, माइक वस्तु है, और भगवान की जो प्रीति है वो भगवान की स्वरूप शक्ति की प्रीति है, दोनों एक नहीं है। मूलतः एक है तो होने पर भी दोनों एक नहीं है, केवल एक बहुत दूर से समता मात्र तुलना एकमात्र देकर के दिखलाया गया है, दोनों किंतु पृथक पृथक तुलना नहीं दिखलाया। विश्व के प्रति हमारी जो प्रीति है वही उठ करके भगवान में लग जाए तो वो प्रीति होगी कि नहीं, नहीं होगी, क्योंकि माइक वृत्ति है, जड़ वृत्ति है। केवल एक बहुत दुर्गत उदाहरण देकर के समझा, वैसे ही हमारी प्रीति ये तो ठीक है किंतु वही उठ करके उसमें लग जाए तो माइक वृत्ति हो जाएगी। अब बतला रहे हैं कि उल्लासात्मक ज्ञान विशेष का नाम सुन, अपना खूब भीतर में उल्लास हो जाता है कोई चीज को देखकर तो उसको कहते हैं सुन। इसको मुत भी कहते हैं, मुत माने आनंद, सुख, प्रमद इत्यादि, और दूसरे का नाम प्रियता है, जिसका दूसरा अर्थ भाव हार्द्र, हार्द माने हृदय का भाव, और सौहृदय सुहृदता का भाव, ये सब प्रियता का अर्थ। सौहार्द में एक कोई सुहृद होना चाहिए नहीं तो वो नहीं होगा, एक दूसरा होना चाहिए उसमें विषय। इसमें उल्लासात्मक ज्ञान विशेष का नाम सुख, और विषयों के अनुकूल जिनका, विषय के अनुकूल के अनुसार जिनका जीवन है और जिसके द्वारा विषय का अनुकूल्य है, उसके अनुगत विषय को पाने के लिए जिसमें स्पृहा जगती है, उस स्पृहा का नाम प्रियता है। नहीं समझ में आया? प्रियता में दो वस्तु हैं, एक प्रिय है एक प्रियतम है, प्रियतम विषय है और प्रिय आश्रय। जब प्रिय का प्रियतम के सुख के लिए, प्रीति के लिए, प्रिय के हृदय में जो भावना उठती है सेवा इत्यादि की, तब तो ये प्रियता हो। सुख में ये सब चीजें नहीं, सुख में ये सब चीज़ नहीं है, सुख में बस अपना उल्लास चाहिए, और प्रियता में अपने विषय का
विषय का उल्लास,
उसके उल्लास से हमको उल्लास होगा। इसलिए सुख का विरोधी विपरीत अर्थ है दुख। दुख में भी अपना ही दुख होता है, और विरह में क्या होता है, विरह में विषय के विरह से इनमें विरह होता है, सब समय उसके साथ में संबंध रहता है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, एक प्रियता का विषय में जो प्रियता है उसके लिए दिखला है, वैसे ही भगवान में
प्रियता
प्रियता है। सुख को तो काम समझो, इसको दूर करने की चेष्टा करो, इसे हमारा कोई भी कल्याण नहीं होगा। सुख यह सुख प्रियता में अपने आप अंशुत रहता है, मतलब उसमें होता है। प्रियता यदि किसी को प्रेम हो जाए ना, तो ये सुख भी उसमें अपने आप आ जाता है, वो कुछ उसके लिए करना नहीं पड़ता है। गंगा के किनारे हम जाएंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे तो प्यास जाएगी कि नहीं, वो अपने आप शरीर ठंडा हो जाएगा। खूब अभी अभी जा करके हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाओ, प्यासा व्यक्ति भी वो पानी पीने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप शरीर शीतल हो जाएगा, अंततः कंठ भी सुशीतल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के प्रति यदि प्रेम हो तो अपना सुख भी हो जाएगा, भगवान के सुख से इसमें सुख अपना। इसलिए प्रियता में सुख और आनंद दोनों है, आनंद माने प्रभु के आनंद से, और सुख में केवल एक है अपना, किंतु इससे यथार्थ में ये स्थिर नहीं रहता, ये चौपट हो जाता है। तो इनका ये कहने का ये तात्पर्य है, अविवेकी मनुष्य भी जिनको विवेक नहीं है कुछ, वो लोग भी जैसे विषयों में प्रीति करते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के प्रति अपनी चित्त वृत्ति लगाएगा ना, तो उससे भगवान प्रसन्न होकर के हमारी चित्त को भी प्रसन्नता हो सकती है, अविवेकी लोग। किंतु इसमें विवेक अपने आप पहले हो जाएगा निश्चित रूप में, बतलाया है ना, जैसे भक्ति परेशान अनुभवो विरक्ति अनत्र चैस एक का, तीनों एक साथ में पुण्य वृत्ति और शरीर में पुष्टि और खाने की अस्पुजा, ये तीनों एक साथ में हो जाती है, ऐसे ही ये हो जाता है। एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, प्रियता का उदाहरण दे रहे हैं। एक कोई व्यक्ति था, वो उसने विवाह किया, उसके बच्चा हुआ, इसके बाद देखा जी इसका पाप धर्म पोषण वो नहीं कर पा, लड़के को भी कष्ट हो रहा है, इनको भी कष्ट होता है, बच्चा जब दुख पाता है तो ये भी दुखित हो जाता है, तो इसलिए वो विदेश में कहीं चला गया दूर, और वहाँ उसको 25 रुपए की एक नौकरी मिल गई पुराने जमाने में, कहीं चपरासी हो गया या कहीं दुकान में दरवान इत्यादि हो गया, 25 रुपया मिल रहा है, या जूट मिल में 25 रुपए की नौकरी पर बहुत परिश्रम करता है और 25 रुपये महीने में पाता, उसमें 5 रुपये में अपना खाना पीना रहना सब कर लिया और बाकी रह गया 20 रुपये को उसने घर भेज दिया, और कष्ट करके वहाँ रहता है, कभी पेड़ के नीचे सो जाता है, कहीं रास्ते पर सो जाता है, जैसे तैसे और किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करके, और 25 रुपया थे
25 रुपये की नौकरी।
अरे पहले ये पूछो ना उससे, 15 रुपए में पुरुष में लोग भर्ती होते थे, उसमें से उनको 50 रुपया मिल जाता था, 15 रुपए की नौकरी करते, और 15 रुपए वो 15 रुपए में उनको लाभ हो जाता था 50-25 का, और उसे घर बना लेते, दूसरों को जमीन खरीद लेते, कितने बीघे 1000 बीघे बड़े बड़े जमींदार हो जाते थे, और फिर बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपना परिवार पाते थे, लड़के लड़की सबको शादी कर करके भी जमींदार बन जाते थे। ये 15 रुपये की नौकरी जो आज 1500 रुपये में भी कुछ नहीं हो, तो वो भेज दिया करता। एक आदमी कहे तुम बड़ा मूर्ख आदमी है, इतना दिन भर सवेरे से प्रयत्न करता है, कहीं पेड़ के नीचे सो जाता है, कहीं रास्ते में सो जाता है, खाता पीता तो ऐसा ही है, 5 रुपये में करता है, 20 रुपया तो लोग प्रति महीने में मनी ऑर्डर करते, क्यों करता है? तो उसने कहा भाई घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं, वो बच्चा है ना, मैं घर में था उसको मैं दूध नहीं दे पाता, उसको खिला पिला नहीं सकता था, अच्छी तरह से पोषण नहीं कर पाता, हमें रुपया भेजता हूँ तो लिखता हूँ जब बच्चा कैसा है लिखना, और तुम कैसी हो ये भी लिखना, अपने लिए कपड़े टपड़े ले लेना, और बच्चे को भी अच्छे कपड़े पहनाना, और उसको दूध खिलाना, उसको अच्छी तरह से रखना। देखो ना ये चिट्ठी आई, और उल्लासपूर्वक उसको पढ़ करके सुनाने लगा, बच्चा बड़ा हो रहा है, प्रतिदिन उसको मैं दूध देती हूँ, अब तो वो किलकारी मारता है, बड़े आनंद से यहाँ पर हम लोग हैं, ये देख करके सुन करके ही उसका हृदय एकदम आनंद से
भर जाता है।
कहाँ है बच्चा, कहाँ है उसकी पत्नी, और वहां से पत्र आया बस उसी में आनंद। ऐसे ही भगवान के साथ में जिसका संबंध हो तो भगवान के सुख में किसको कितना सुख होता है वही जानता है, जो कि भगवान के प्रति जिसकी वैसी प्रीति है हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। जब किसी उनकी कथाओं को सुनने से इतना आनंद है, और हम जब अपने को उत्सर्ग कर देंगे उनकी सेवा में, और उस उत्सर्ग करने से भगवान को इतना भी यदि संतोष और आनंद हुआ, और ये यदि हमको मालूम हो जाए तो हमें आनंद से कर जाए, ये है यह। इसी को लक्ष्य में रख करके मैं अहं हरे तम दासैक दासां भूयतासु भूय मनस्मरे तासु गणित वाक कर्म करोति कायम। हमने वृंदावन में इस श्लोकों को आरंभ किया, अब उसको फिर से हम लोग जी गोस्वामी जी की व्याख्या के संबंध में हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यदि सचमुच में हृदय में हम लोग इसको धारण करें और ऐसा ही चलें तो हम लोग वैसी भक्ति हो सकती है। वृत्रासुर का उपाख्यान इसी प्रियता के ऊपर में निर्भर है, और वैसे ही अपनी प्रार्थना में ये कर रहे हैं, इसीलिए अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण होने के नाते इस उपाख्यान को श्रीमद्भागवत का एक विशिष्ट भाग मान लिया, लक्षण में दिया, जिसमें वृत्रासुर उपाख्यान का वर्णन है वो भाग। तो ये बहुत ही ऊंचे भाव है, तो कि आज हम लोग इसको श्लोकों की कुछ व्याख्या है। वो श्लोक है
अजात पक्षाइव मातरम खगा तन्यम यथा वत्स तरा शुभा।
उसके ऊपर कौन है
अहं हरे तव पादैकमूल दाशां दासो भवितस्म भूय मनस्मरेतासु पतेर्गुणानं गृणीतवाक् कर्म करोतु काय ननाक पृष्ठं न च पारमेष्यम् ंसी अजातव मातरं खगा सन्नं यथावच्चकराक्षुधार्थ प्रियः प्रियेव विशुतं विषन्ना मनोर्वृन्दाक्षति दीक्षते त्वं ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भवतः स्वकर्म तन्मायात्माय जगदारकेहेषु आसक्तचित्तस्य
याद कर लेना आप लोग सभी लोग बैठ इन श्लोकों को खूब याद अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे यदि भक्ति की जरूरत हो उनका तब ब्रह्मचारी लोग और याद कर लेना भक्ति में लज्जा की कोई जरूरत नहीं बुरे कर्मों में लज्जा की जरूरत है एकदम उसमें लज्जा भय घृणा इत्यादि न रख करके अपने भी भजन करेंगे दूसरों को भी भजन करें ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं अहम भरे साधारण रूप में इसका अर्थ हमने बतला दिया था हे हरे ये भगवान को वित्ता सूजी प्रार्थना कर इंद्र मारने पर भी इंद्र उनको नहीं मार सके बल्कि इन्होंने अपने गदा के प्रहार से इंद्र के वज्र को गिरा दिया और उनका हाथी उसका यहाँ पर ऐसा मारा जे चूर्ण भी चूर्ण हो गया और हाथी भी उनका क्या नाम है हाथी
का
और तब वो लज्जित होकर के वज्र को उठाए नहीं खड़े रह करके कोई सोच रहे अब तब ये श्लोक पढ़ ये बराक इंद्र मुझे क्या मारेगा ये तुच्छ ये तो मूर्ख है क्यों मूर्ख है ऐसा वज्र मूर्ख मूर्खों की एक सीमा होती है अरे भगवान के पास में रह करके वामन देव के निकट में उनके चरणों की सुशीतल छाया नहीं मांगता उसकी सेवा नहीं मांगता कहता जे प्रभो ये असुर लोग हमारा ये सब राज्यपाज लूट रहे हैं आप मेरी रक्षा करो हमारा ये धन इंद्र कानन कौन कानन और मेरी स्त्री और उर्वशी और मेनका इत्यादि जो हमारी क्रियाएं हैं इनको कहीं लूट न ले जाए बस आप यही मेरी रक्षा की स्वर्ग की रक्षा ऐसा ये बच्चों कब तक के लिए एक न एक दिन तो जाएगा भगवान के चरणों में प्रीति ये नहीं मानता इसलिए इसको तुम खुद दिखता है तू नहीं मारेगा तो ठीक है तुम मत मार जाओ ऐसे ही खड़े तब भगवान को स्मरण करते अहं हरे तो तुम दासानुपातो दासो साधारण इसका अर्थ है मैं आपके दासों के अनुदासों के जो अनुदास हैं जो आपकी सेवा करते हैं उन सेवकों की जो सेवा करते हैं फिर उनकी उन सेवकों की जो लोग सेवा करते हैं यही लोग आपके चरणों के मूल हैं इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः मैं हूँ मैं जन्म ग्रहण करूँ तो उनका सेवक हो। और भूया माने फिर यदि जन्म लेना हो भविष्य में भी तो उन्हीं का दास होकर के ही मैं जन्म लेता हूँ, अभी भी सेवा करता और पीछे से मैं जन्म लू यदि कहीं लेना पड़ेगा तो लेना तो पड़ेगा, मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, प्रभु आप यही करेंगे। उन ऐसे भक्तों के साथ में हमारा संयोग कर देंगे, उनकी सेवा में हमारा जीवन दास होने दास भविदास मधुया। और मनस्मरे अशुपते नाना, हे प्राणनाथ हमारा मन आप ही का स्मरण करे, आपके नाम का, लीला कथाओं का, आपकी करुणा का, आपके रूप का, ये सबका गणित बात। और जिसको मैं स्मरण कर रहा हूँ उन्हीं चीज़ों का वर्णन मुख से हो, प्रभु का नाम, प्रभु की गुणावली, उनकी लीला कथाएँ, उनके भक्तों का चरित्र, प्रभु का चरित्र, उनकी दया की बातें, करुणा की बातें, उनकी लीला कथाओं का मन स्मरण करे और वाणी गुणानुवाद करे। और कर्म करो तू काया, और शरीर क्या करे
आपकी सेवा,
वही जो जो स्मरण कर रहा हूँ उन्हीं का ये सेवा करे, प्रभु की सेवा करे वाणी के द्वारा, तो वो हुआ शरीर के द्वारा कैसे सेवा करे, मैं उन्हीं लीला स्थलियों में जाऊँ जहाँ की वो सब लीलाएँ हैं, वहीं पर शरीर से लौटूँ, उन कुंजनों में झाड़ू दूँ, मंदिर हो तो मंदिर में झाड़ू दूँ, उनको धोऊं पोछूं। बहुत से लोगों को देखते हैं कि वृंदावन में सेवा कुंज में निधुवन में और सब जगहों में बड़े बड़े घर की रानियां स्त्रियां लज्जा फज्जा छोड़ करके एक एक झाड़ू हाथ में ले ली और सवेरे शाम वहां पर पहुंच जाती हूँ और बस कीर्तन करती हुई, लेकिन प्रतिदिन इतना सवेरे में इतना साफ सुथरा कैसे, वो हम लोगों के जाने के पहले ही वो झाड़ू देकर के साफ किया और बड़े प्रेम के साथ सवेरे शाम जब उनका पानी से कोई घर से पानी ले जाते वहाँ पर पानी है तो सब कुछ सींचने की कोशिश करते इस तरह से वहाँ, और वहाँ का लीला कथा को स्मरण कर रही हैं, उनको प्रणाम कर रही हैं और गा रही हैं और शरीर के द्वारा, जैसे हमारे कौन महाराज अम्बरीश महाराज शरीर के साथ में वैसी सेवाओं को करते हैं। ऐसे ही कर्म करो तू काय, कौन सा काय, ठाकुर जी के लिए पुष्प माला सदरे और तुलसी चयन कर लिया, ये कर्म हुआ ना शरीर के द्वारा, माला गंथन किया, चंदन घिसा, उनके बर्तन सब साफ किए और फिर उनका अर्चन किया, उनको भोजन के लिए प्रसाद के लिए फिर मैंने रसोई बनाई और लेकर के ठाकुर जी को आ रहा, कितने बड़े प्रेम के साथ, फिर आरती उतारी दोपहर की, फिर उनको शयन दिया, फिर शाम को फिर उठ करके फिर उनकी सेवा में विधिवत लग गया। ये सब भी भगवत पदार्थ कर्म है भगवान के लिए, वैष्णव की सेवा, विष्णु की सेवा, गुरु की सेवा, सब इसी के अंतर्गत में करो तू काय, शरीर के द्वारा ऐसी सब सेवाओं में सारा दिन निकल जाए। नना कपृष्टम न च पारमिष्टम, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी इस प्रार्थना से बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम कुछ मांग लो। कहते हैं नहीं प्रभु आप मुझको कुछ बार मत दीजिए, बार की लालसा से मैंने नहीं किया, आपके चरणों में प्रीति रहे कैसे, वैसे जैसे कि अविवेकी लोगों की प्रीति होती है ऐसे हमारी प्रीति आपके चरणों में बस यही हम पूछे ही और कुछ नहीं। बेटा एक बात करो, तुमको मैं स्वर्ग लोक दे देता, बड़े आनंद से नंदन कानन में विचरण करना और हमारा भजन करना, वहीं पर एक मंदिर भी वहीं पर बना देना और वहाँ पर तुमको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, कूलर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और सब कुछ वातानुकूल सब कुछ जैसा चाहेगा और मरेगा भी नहीं, जन्मेगा भी, अमर हो जाएगा, अमृत पी लेना। कहते नहीं प्रभु, एक दिन एक दिन एक दिन कर्मों का फल शेष होगा और वहाँ से गिर जाना। नहीं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम। प्रभु ने कहा अच्छा तो ऐसा करो, ये त्रिलोकी की रचना करने वाले जो ब्रह्मा हैं, ये ब्रह्मपद तुमको दे देता हूँ। बस त्रिलोकी का निर्माण करना और हमारी सेवा करता रहना। प्रभु उसमें तो और मैं भूल जाऊंगा, और कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आऊंगा, वृंदावन में बछड़ों को और सखाओं को चोरी कर
अपराध कर लूंगा,
और कभी कभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को बर दे दूंगा, और होकर के आपके भक्तों के साथ में द्रोह करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूँगा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को उन्होंने बर दिया था, रावण और कुंभकर्ण को भी उन्हीं ने बर दिया था, और जितने उत्पाती हुए हैं ना सबको वही। ये मैल से निकला था कौन?
नरकासुर
मधु
से पहले
मल से पैदा हो गया। तो ऐसे ऐसे
मधु
कई चौर हैं, ये सब ब्रह्मा जी के वर से ये जितने हुए सबको मैं दे देता हूँ, और वो लोग हमको आपको कष्ट देते हैं, आपके भक्तों को कष्ट देते हैं, इसलिए मैं नच पारमेष्टम। ठीक, नच पारमेष्टम न सार्वभौम सार्वभौमत्व राजा सम्राट, ये तो मैं कभी लूंगा, इसमें बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भक्तों को हीन देखूंगा, उन पर भी शासन करूंगा, थोड़ा सा सांसारिक वैभव होने पर भी भक्तों को तुच्छ ताल छिल्य समझते हैं, आत्मविवेक इत्यादि भी कुछ नहीं रहता, अपने को बहुत बुद्धिमान समझने लग जाते, अहंकार बढ़ जाता है, हरि कथाओं में जाने में भी लज्जा होती है, बहुत लज्जा होती है। बड़े बड़े धनी लोग हैं ना, वो इच्छा होगी बड़ी, यह मैं चला जाऊँ वहाँ पर हरि कथा, वो लोग नहीं आ सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभु हमको सार्वभौमत्व की जरूरत है, न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। बलि महाराज जैसा पाताल लोक का राज्य, वो स्वर्ग से भी अधिक उसमें वैभव है, ये भी हमको नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष हमको नहीं चाहिए, आपकी सेवा के अतिरिक्त हमें किसी चीज की कोई लालसा नहीं। अरे तभी तो कुछ मांगो, तब फिर ये कह रहे हैं अच्छा यदि आप प्रसन्न हैं तो ऊपर में हमने जो जो बातें कही हैं मन के द्वारा आपकी लीला कथाओं और नाम इत्यादि का मैं चिंतन करूं ना, और वाणी के द्वारा आपका गुणानुवाद करूं, और शरीर के द्वारा
सेवा करूं।
अब उन्हीं तीनों को चीज़ों को मैं मांग रहा हूँ उदाहरण के साथ ना? क्या चीज़ मांग रहा हूँ? अजात पक्षायुग मां कर, कैसे मैं चिंतन करना चाहता हूँ आपके लीला कथाओं का, आपके गुणों का कैसे चिंतन करना चाहता हूँ? अब उदाहरण देकर के बतला रहे हैं, अजात पक्षायुग मां करम फला। जिस प्रकार से एक पक्षी शावक है, उसके पंख भी नहीं आए, बिना भी पंख का है, आंख खुल गई है, अब पंख धीरे धीरे आने वाले हैं, मैया उड़ करके चली गई, उसके लिए क्या लाने?
दाना
चुनने के लिए, और उसके लिए कोमल कोमल मशरूम कीड़ों को वो पकड़ रहती है, जो रहते हैं केचुए केचुए छोटे छोटे फुनगियाँ उड़ती हैं कोमल कोमल, बस उनको पकड़ लेती हैं और अपने मुख में ही उनको चिबा चिबा करके कोमल तरल और खूब स्निग्ध कर देती हैं और बच्चों के मुख में उसको देती हैं। ये मैया का काम है। तो वो कह रहे हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा। जिस प्रकार से पक्षी शावक अपनी माँ के बाहर जाने पर मैया के लिए स्मरण करते हैं, मैया कब आएगी, मैया कब आएगी, मैया कब आएगी, वो करते हैं, कहते किस लिए, किसी से किसी ने पूछा जो मैया के लिए किस लिए चाहती है, उसके अंतर की भावना यदि देखा जाए, मैया को नहीं चाहती, मैया को नहीं, वो तो चाहती है जो दूसरे पक्षी जो हमको खा जाते उसका जो डर बना हुआ, मैया आने से वो लोग हमें नहीं खाएंगे। जैसे है उल्लू, घोंघे, वो और जो सेम पक्षी है कौवे हैं, उनको मार करके खा गए तो उसकी मैया वहाँ रहेगी, तो डर है, एक तो डर दूर होगा और दूसरी बात मैया लेकर के कुछ आएगी हमारे मुख में खिलाएगी, इसलिए मैया की जरूरत अपने लिए
अपने साथ।
उन्होंने देखा जब मैंने ये जो कहा अजात ईव, जिस प्रकार से पक्षी सावक जिसके पंख नहीं निकले हैं वो मैया का जैसे चिंतन करते हैं वैसा हमारे अंदर में चिंतन तो हो, किंतु जिस प्रकार से वो चिंता करता है मैया की अपने दाना के लिए, पुष्टि के लिए, आहार के लिए और अपने निर्भय होने के लिए, वो चीज़ हमारे अंदर में रहता, इसमें ये दोष है, अपना अपन अपने सुख के लिए हो, इसलिए इस उदाहरण में कुछ कमी देख करके इसको, किंतु चाहते हैं जो उन्हीं उसी के समान जैसे मैं स्मरण करती है वो पक्षी सावक, ऐसे ही मैं स्मरण करूँ, किंतु ये दोनों ये चीज़ है, अपने पोषण की चिंता और दुख दूर की चिंता, ये हमारे अंदर में। अच्छा, दूसरा मुख वाणी के द्वारा उनका गुणानुवाद, वाणी के द्वारा कैसे गुणानुवाद, इसके लिए उदाहरण बच्छतरा स्तन्नम यथा बच्छतर क्षुधार्ता, जिस प्रकार से क्षुधार्थ वर्ष वत्स के लिए बछड़े के लिए स्तन होता है, गाय नहीं कहा स्तन कहा, बछड़ा किसका स्तन चाहता है, अपनी मैया गाय का स्तन चाहता है, क्यों नहीं कहा, इसीलिए वो मैया को तो चाहता है किंतु मैया को नहीं चाहता, मैया का स्तन चाहता है, शरीर का वही अंग उसको प्रिय है, वो गैया चाहती है कि हमारे मुख के सामने ये बछड़ा रहे तो मैं इसको चाटती रहूं, और वो घूम फिर करके पीछे चलाता है और उसका स्तनपान करता है, कहता है इस उदाहरण में से केवल ये भाव लेना है, गैया गई जंगल सवेरे, बछड़े को दूध पिलाया और चली गई जंगल में चरने के लिए, और चरवाहा उसको दिन भर चराता रहा सवेरे से, अब शाम होने को आई, खूब चर रही है, जब शाम हो गई तो चरवाहा उसको घर और लेकर के आने, अब उसको गाय को याद पड़ी अपने बछड़े, और इधर ये बछड़ा जो है दोपहर के बाद से भूखार्थ होकर के क्षुधार्थ होकर के भूख से बेचारा डकारने लगा, गाँ 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 कर रहा, देखा जी आकाश में धूल आ रही है, अब मैया आ रही है, उसका डकरना और बढ़ गया, इतने में गैया ने वहाँ पर डकारा, उसकी आवाज़ सुन करके एकदम ये नाचने कूदने लग गया मैया की, और बार बार अपना अपनी रस्सी तोड़ करके भी मैया के पास में जाए, किंतु निष्ठुर वो ग्वारा ग्वारिया गाय को लेकर के अलग बांध दिया और बछड़ा उधर, अब वो घर गया और वो रस्सी और हड़िया लेकर के आया दुहने के लिए, और उस समय में ये बछड़ा डां डां कर रहा, जब वो रस्सी खोलने गया तब उस बछड़े से रहा नहीं गया, बस दो पैर पर खड़ा होकर के फरा, रस्सी एकदम तन गई और बेचारा ये खोल नहीं पाता, इसलिए उसको गले से पकड़ करके खींच लाया, रस्सी ढीली की और वो तो छटपटा रहा है, डां 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 कर रहा, गैया भी डकार, कहता ऐसे ही भगवान को हम पुकारें, हम लोग भगवान को ऐसा पुकारते हैं, एक बार देखो, यदि पुकारेंगे तो आंसू आ जाए, तो बेचारे को आंसू भी आ जाता, हृदय से पुकारता है। ऐसे ही भगवान को मैं पुकारूं ये कहते हैं। ऐसे कहते कहते उनके अंदर में भावना आई, ठीक है ये पुकारना तो ठीक है भगवान के लिए, किंतु उसकी वृत्ति केवल स्तन के लिए है, दूध के लिए है, अपने सुख के लिए है। गाय का सुख क्या हुआ इसमें, अपने मैया का मैं उसे कोई समझ, उसका स्तन के ही साथ में। जिस प्रकार से अभी पहले वाला जो चिड़िया जो थी उसको पंख नहीं उगे थे, वो स्मरण कर रही है अपनी मैया के लिए, किंतु जब वो बड़ी हो जाएगी चिड़िया तो अपनी मैया का स्मरण करेगी कि अपने आप जंगल में चले जाएगी और खा लेगी और चलेगी, मैया को पूछेगी नहीं मैया कहाँ गई, बस संबंध खत्म हो गया ना उसका। ऐसे ही हम लोगों का वैसा ना हो, उसमें वही केवल खाने का संबंध रहेगा ना, तो भगवान खाने को दे देंगे फिर उनको हम भूल जाएंगे, इसलिए ये भाव नहीं है। दूसरे श्लोक में वो जो पुकार रहा है वही यदि सारा दिन रात पुकारता होता है तो एक बात होती, हम लोगों का कहीं पुकारना ऐसा न हो जाए कि प्रभु हमें थोड़ा सा सुख दे दिया और सुख में भूल करके भगवान को पुकारना हमने बंद कर दिया, इसलिए सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे में वज्र पड़े, सुख कभी आएगी नहीं, सुख के माथे सिल पड़े, याद है, दुख ही हमको मिले और उसमें उनका स्मरण हो और उनको मैं पुकारूं ऐसे ही, ऐसा हो, इसलिए वो सुख मिलना की जरूरत है।